तो भगवान के मां खूब करना चाहिए कि जिससे गोपियों को भगवान में प्रेम थो ना, इसी प्रकार से आपने भगवान में प्रेम करना चाहिए। गोपियों में प्रधान बात यह थी कि गा दूने के समय, बिलों के समय और झाड़ू देने के समय और घर लेपने के समय और घर बुहारने के समय और बालकों को खिलाने के समय, जुलाने के समय और धान कूटने के समय हर वक्त भगवान के नाम गुणों को कीर्तन करते हैं। आंखों में आंसू भरकर सुन लेती है, बड़े प्रेम के साथ की इसके मां भगवान के नाम गुणों को कीर्तन करना हो तो गुणा को नाम को कीर्तन करने से बड़ो आनंद आता है उन्होंने। अरे काम मेरे शरीर से काम आता से भजन है जी को अपने वाणी से इसी तरह अपान करना चाहिए और मन जो उनको भगवान में व्यस्त हो, मन से भगवान के स्वरूप को ध्यान करती तो मन से तो ध्यान करना, वाणी से नाम गुणों को कीर्तन करना और शरीर से काम करना, इस प्रकार से थी समझो कि एक साथ ये रोजगार चले, इसको ऐसा काम चले तो बड़े दिन को क्या ठिकाना। तो देखो हो तो भगवान में प्रेम तो भगवान होना का बस में हो जाता, जब मैं बुलाती तो भगवान एक प्रकार से आपने आने की चेष्टा करता, नहीं आता तो वो पेड़ में घाटो नहीं थो, वो तो मेरे की व्याकुलता को आनंद मिलते बना रहे। विवेक की व्याकुलता में ये आनंद मिला है कि ज्ञान के बीच के मां मेरे को ध्यान बहुत अच्छे लगे, तो ज्ञान में तो ध्यान और संयोग के बीच के मां प्रेम, ज्ञान में विवेक की व्याकुलता। तो इसी प्रकार से अभी आपने भगवान अपनी दृष्टि के मां यहां हाजिर नहीं है तो ज्ञान हो तो विवेक की व्याकुलता बहुत उत्तम चीज है। अपने खूब रोनो भगवान के आगे, हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, इस तरह से खूब एकदम करुणा भाव से अपने विलाप करना चाहिए मन ही मन के बीच के मां। आपने भगवान के विषय कई संकल्प विकल्प करना चाहिए, जहां भरजी महाराज मन ही मन के मां संकल्प विकल्प कर रहे कि भगवान क्यों नहीं आया, क्या कारण है जो भगवान अभी तक नहीं आया। इसी तरह से विनय की व्याकुलता के मां रुक्मिणी जी विलाप कर रहे हैं कि कृष्ण जी नहीं पूछा तो कि भगवान क्यों नहीं पहुंचे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप में भगवान विलंब कर रहे हैं। तो यह दशा अपनी होनी चाहिए, भगवान के देह में इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि अपने देह देह को भी ज्ञान नहीं लगे और भगवान खुश हो तो वैसे मांगे क्या कि प्रेम, बस और कुछ नहीं मांगे कि भी आप में हमारा श्रद्धा पूर्वक प्रेम हो रहे, प्रेम होने से कि भजन ध्यान अपना आप ही हो। संसार में आप प्रेम हो तो संसार को भजन ध्यान आप ही करो, थोड़ी बुरा फल है। संसार में प्रेम हो तो संसार को भजन हो, भगवान में प्रेम हो तो भगवान का भजन। तो खूब भगवान में प्रेम कर, सबसे प्रेम हटाकर एक केवल भगवान में प्रेम करे और शरीर और संसार में भुला दे, एक में बात यह है। और ये गाना गावे कि मैं आशक तेरे रूप पे बिन मिले सवर नहीं होती, बिन मिले सवर नहीं होती, मैं आशक तेरे रूप पे बिन मिले सवर नहीं होती हरि। कोर्स ये है ये हरी, मैं तुम्हारे रूप पर आ सकूं और तुम्हारे बिना दर्शन की चैन नहीं पड़ती। इस तरह से भगवान के वास्ते विरह में व्याकुल हुए। अब एक बात तो मैं आपने बताई, अब दूसरी बताओ, सबके साथ के बीच के मां अनासक्त भाव से प्रेम कर लू, कम आसक्त होने अब प्रेम कर लू। यह महात्मा लोग करे या ईश्वर करे, या ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से सबके साथ हम लोग प्रेम करें तो वो प्रेम ईश्वर नहीं। रुपयों के वास्ते जो आपने किसी से प्रेम करता है तो रुपयों का दास है, और भगवान के लिए किसी को प्रेम करता तो भगवान का दास है। प्रभु को खुश करने के लिए हम सबसे प्रेम करें तो ये बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज। प्रभु प्रेम के लिए सबसे प्रेम करें, प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से सबसे प्रेम करें तो भगवान इस बात को जानते हैं कि इसका जो तेरे में प्रेम है इसे खूब प्रेम बढ़ावे। जब भगवान में अत्यंत प्रेम बढ़ जाता है ना तो उसके कैसे लक्षण होते हैं, जैसे सुंदर विलास में सुंदर वाली ने कहा है, न लाज तीन लोग वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष सुने न कान और की दर्शे न और इच्छना, कहे न मुख और भक्ति प्रेम लक्षणा। भगवान विराजमान है, इसलिए किसी से भी प्रेम करने से भगवान से ही प्रेम करना, भगवती से जो प्रेम किया जाए वो प्रेम तो भगवान में है। और आप हम लोग यदि किसी के साथ में प्रेम करें रुपयों के लिए, मान बड़े प्रतिष्ठा के लिए, वो नष्ट चीज है। तो मान बड़े प्रतिष्ठा के लिए, रुपयों के लिए, शरीर के आराम के लिए जो प्रेम करना है वो तो स्वार्थ की बात है। वो परमार्थ किसी जगह से हुए, परमार्थ किसी जी तो हुए है स्वार्थ के त्याग करने से। तो सब प्रकार से अपने स्वार्थ को त्याग कर करके फिर देखो, फिर आपने वो असली प्रेम है। तो सब प्राणियों के मां भगवान के आत्मान है, इसलिए भगवान का दर्शन करता हूं मैं, सबकी सेवा करे, सबसे प्रेम बढ़ावे, खूब प्रेम बढ़ावे। और सेवा करने से आप ही प्रेम बन जाता है, सबकी सेवा करे तो बालकों के लिए तो बड़ा अच्छा मार्ग है। बालक जो है केवल माता पिता की सेवा करके के परम गति प्राप्त हो जाए, सरल है जो माता पिता को उच्च कोटि को भगत हो सब लोग उद्धार हो तो यह कड़ा है। नारायण 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 सुंदर कीर्तन एकदम चित खुश हो जाए। एक स्वर से एक ताल से कह जाए तो कीर्तन है जिसको अपने भगवान को सुन लाल कर ले। कीर्तन करने के समय के विषय यह बात सुननी चाहिए, भगवान हमारे साथ में कीर्तन कर रहे हैं, खड़े होकर नाचे गावे बजावे तो यू भाव करे तो इससे प्रेम बढ़े भगवान का मन। और सबके वहां भगवत बुद्धि करके सबसे भगवान के लिए जो प्रेम है सो वो प्रेम भी भगवान की प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करें। और भगवान के लिए सुख सुखना जो कुछ भगवान के सेवा के रूप में भगवान के लिए तो कर लो, और भगवान की हुक्म के नाम कर लो, फिर भगवान की प्राप्ति हो और क्या फर्क है। तो आपन तो जीवन सफल बना लेना, समय तो बहुत कम रह गए, जो समय है इसी में काम बढ़ाना है। तो सब में बहुत बुद्धि करनी, हृदय देकर के मुंह धोल बाप और वो बाप, जहां नहीं तो जाए वहां भगवान ने देखे, जहां नहीं जाए वहीं भगवान को देखे। जो कुछ संसार के वहां कार्रवाई हो रही है ये भगवान के हुक्म से हो रही, तो भगवान एकमात्र ऐसे है कि जिसके कोई जोड़ी का कोई हाथ नहीं, भगवान के समान भगवान ही है, भगवान दो कहां सा। तो साक्षात भगवान से मैं विराजमान है यह समझकर सबकी सेवा पूजा करे और उसको त्याग करके किए बड़े प्रेम से सबकी सेवा पूजा करे भगवत बुद्धि से, भगवत बुद्धि से तेज हो, निष्काम भाव से भगवत बुद्धि से। तो चेष्टा मात्र को तो भगवान की लीला समझे, और चराचर जो है प्राणी जिन्होंने भगवान को स्वरूप समझे, भगवान ही इन संख्य मां विराजमान है ऐसा समझ करके सबसे प्रेम करे, तो सबसे प्रेम उसको भगवान से प्रेम है कि भगवान उसके मां विराजमान है, इसलिए खूब आनंद आता है, रोमांच होने लगते हैं, आंसू प्राप्त होने लगते हैं। तो ये तो स्वयं कल्याण से अभिशाप है, कल का क्या भरोसा। काम ममता आवगम आवगमता विचार करता है कि मैं कल से भजन शुरू करूंगा। सो आप कोई उपदेश रखे कि काल भजन तो आज भजन, काल भजनों की विचार करो, आज ही शुरू करिए, आज को विचार हो तो अभी शुरू कर, क्योंकि जी क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन रहेगा, पर मैं मृत्यु ये सब बात आपने सोच करके कि कमर कस करके आपने जो साधन करना चाहिए, हाथ सांस करके नाच नाच करके साधन करना चाहिए। जब गोपियां भगवान से निकली तो जिनके साथ में नाच नाच करके रास करा करते, मैं सब मिलकर के दीवानों को नाचू गाऊं बजाऊं, इसमें ना रास। तो वो असली रास तो आजकल का जो रास है जिसका तो नकली रास है, अनुदम नहीं है, सच्चाई नहीं है, और वो तो साक्षात हो तो वो साक्षात जो असली रास हो जाता हो उसके भाव से भावित होकर के मैं आप निवास में शामिल हो जाता। भगवान तो आजकल तो बोले आपके क्या प्रत्याई सोने पचास सोए हैं आपके कभी जा रहा, उसके लिए बिना नहीं क्योंकि भगवान सजे आए और चाहते सोए। जय सीताराम सीताराम
Bye.
है तो जब आप कही थी अनंत प्रेम की बात को प्रभाव की को, तो प्रभाव की बात बतलाई जाए कि संसार के वहां किसी ने भी जो कुछ प्रभाव देखने में आए हैं उस प्रभाव भगवान को ही है। दुनिया में जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता है, उन सब के मन जो प्रभाव है, जो सिद्धि है, जो कुछ सामर्थ है, वो सब भगवान की है। दूसरे लोग जो अभिमान कर लेते हैं कि ये मेरा प्रभाव है, तो उसकी मूलता मूलता उसकी प्रभाव भगवान का है। देखो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, केवल उपनिषद में कहा आती है कि एक समय के बीच के मन जो है देवताओं की सभा बैठी थी इकट्ठे होकर के स्वर के बीच के मां, तो उस वक्त में इंद्र ने देखा कि कोई एक तो सामने यक्ष के रूप में खड़ा है, तो कहा देव तुम जाओ परीक्षा करो ये यक्ष के रूप में जो दिखता है सो कौन है। अग्नि देवता गए साक्षात मूर्ति होकर के और पूछा प्रभु आप कहां से आए कौन है, तो उस यक्ष ने कहा कि मेरा नाम यक्ष है, तुमको तुम अग्नि देवता कहता है कि मेरा नाम अग्नि है, दूसरा मातृश्व, दूसरा नाम जातवेद, पहले नाम तो है अग्नि, दूसरा जातवेद, आपकी सामर्थ्य बोले सामर्थ्य की तो पूछो ही मत, मैं चाहूं तो क्षण आते मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर डालू। बोले वाह, तो उस यक्ष ने उसकी सामने तीन क्या क्या बोले इसको भस्म करो, तो अग्नि ने अपना सारा जोर लगा दिया कि तू अग्नि उस तीन को भस्म नहीं कर सका, क्योंकि अग्नि में जो शक्ति थी वो तो भगवान ने बैठी थी, अग्नि बाकी है क्या। तो अग्नि देवता वहां परास्त होकर के हार करके देवतों के सभा में आए और कहा कि मैं नहीं जानता कि यक्ष के रूप में कौन है, तो भाई देवता को हूं देवराज ने कोई जाओ भाई तुम जाओ पता लगाओ, भाई देवता आए, भाई देवता ने पूछो से तुम कौन हो, उसने बोला मैं यक्ष हूं, और तुम्हारा क्या नाम है, यक्ष ने पूछा, तो बोले मेरा नाम वायु देवता है, दूसरा नाम मातृश्व है, तुम्हारी शक्ति मैं शक्ति को क्या पूछू, मैं चाहूं तो क्षण मात्र में इस ब्रह्मांड को डाल कहीं रखे ले, तो उसके सामने में तुम क्या क्या बोले तीन के मुड़ा शक्ति जो उसमें थी वो तो भगवान ने खींच ली, अब उड़ा क्या तुम को नहीं उड़ा सके, तो हार मान करके समझा देवता की सभा में आकर वायु देवता ने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है यक्ष के रूप, तो इंद्र सोचा कि भी कभी इसको भेजू कभी इसको तो चल रहे, तो खुद इंद्र आया, इंद्र आया तो यक्ष अंतर्धान हो गया, और वहां एक उमा देवी प्रकट हुई शिव जी की धर्मपत्नी गोवर्धन जिसका नाम है पार्वती, उसको देख करके इंद्र ने पूछा देवी भगवती अभी एक यक्ष के रूप में यहां खड़ा था वो कौन था, बोले वो भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा तुम लोगों को एक प्रकार से चिताने के लिए आए थे, तुम लोगों के मां जो अभिमान हुआ देवासु संग्राम के मां जो तुम्हारी विजय हुई देवता और आसुर का जो बड़ा भारी घोर युद्ध हुआ उसमें देवताओं की विजय हुई, उस विजय को पाकर के तुम लोगों के मां अभिमान आ गया कि हमारे प्रभाव से हमारी विजय हुई, किंतु तुम्हारे प्रभाव से नहीं हुई, जो विजय हुई सो भगवान के प्रभाव, भगवान ने जब अपनी शक्ति खेच ली तो अग्नि में अग्नि प्राण नहीं बाहू में बाहू प्राणी बाहू गवा तो बल क्या बालक निजी अरविंद के बचाने की प्रकाश करने की शक्ति नहीं थी। ऐसी बात नहीं, ये बात है तुम लोगों के अभिमान बढ़ गया था। वो विजय हो भगवान के प्रभाव से, यार तुम लोगों ने मान लिया अपने प्रभाव, तो इस ज्ञान को दूर करने के लिए भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो देवराज इंद्र को भगवान का ज्ञान सबसे पहले हुआ, फिर देवराज सभा में आकर के वायु देवता को अग्नि को उपदेश दिया, कोई जो उपदेश उसको मिला था ज्ञान का। इसके बाद में इसकी परंपरा चली, तो मिलकर नारायण नारायण दूसरे अध्याय का 41 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि जो जो भी संसार में विभूति वाली चीज है, जैसे दसवें अध्याय के में भगवान ने अपनी विभूतियां बटवाई कि बस वहां के बीच के मां मैं अग्नि हूं और सूर्य की ज्योति वालों के मां मैं सूर्य हूं, पशुओं के मां में शिव और मनुष्य के मां में राजा हूं। तो बात ये बतलाई कि जो भी संसार के मां प्रभाव वाली चीज है, एक उसे भगवान वहां सबको संहार करके उपदेश दे रहे हैं कि जो जो भी विभूति वाली चीज है, इसी प्रकार से जो मन वाली चीज जैसे वायु के मां है, ऐसे जिस संसार में जो बन वाली चीज है, जो शुभ वाली चीज है, यानी शोभनीय पदार्थ रमणीय पदार्थ है, उन सबको भगवान कहते मेरे एक जो तेल का एक अंश है, मेरे प्रभाव का एक अंश मात्र है। तो इस प्रकार से सुनो जी, जिसे भगवान कहे सातवें अध्याय के वहां की बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूं और तेजस्वियों का मैं तेज हूं, तो ठीक बात कही। बुद्धिमान जो आदमी है वो ये समझता है या मेरी बुद्धि है, तो उसकी मूर्ख है भगवान के, वो तो मेरा स्रोत है। संसार में जितना मैंने जितने तेजस्वी पुरुष है, भगवान कहते हैं कि वो तेजस्वियों का विषय जो तेज है सुमन। तो इस प्रकार से थी अपनी विभूतियां भगवान ने धीरे धीरे बतलाई, अपनी विभूतियां कहीं अपना प्रभाव बतलाया, मैं ध्यान में प्रभाव बतलाया, गति निर्भरता पूर्व साक्षी निवास शरण सिंह प्रभाव प्रस्थान विधान विधिमध्यम, इसमें भगवान अपना सो प्रभाव कैसे भगवान है। हम लोगों ने जितना जो कुछ बल है, प्रताप है, तेज है, सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य भगवान की है। भगवान से ही हम लोगों के वहां सब बात आई। जब इस तत्व को मनुष्य समझ जाता है तो सब लोग उसको भगवान ही दिखते। किसी में भी जो तेज है, सत्ता है, स्फूर्ति है, प्रभाव है, बल है, पुरुष है, ओज है, अपने जो भी कुछ है, भगवान कहते मेरे एक तेज के अंश का ही सब मिलकर प्रादुर्भाव है। तो ये भगवान का प्रभाव है। सारे ब्रह्मांड को भगवान अपने एक अंश में धारण के स्थित है। अथवा बहुन ये में क्यों जाते न तवा सुने कृष्ण ने कहा जगत अथवा हे धन तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक अंश करके धारण के स्थित हूं। सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा किसी अंश में है। जैसे आकाश में एक नक्षत्र हो यानी एक तारा, तो तारा आकाश के वहां है। इसी तरह से थी परमात्मा ने अपने आप को शरीर को देखे, फिर इसको मैं भुला दे गए कि परमात्मा ने शुद्ध बुद्ध ज्ञान शुरू कर दिया। तो ये मार्ग बहुत ही सरल सीधा है। आप लोग टेढ़ा मार्ग तो आपके व्यास की कमी है।